आठवां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 35।
भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन
प्रभुपाद द्वारा। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। दोहराइएगा कृष्णा। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भाव से, भक्ति भाव से पूर्ण हैं, और इस भाव से वो अब बोल रही हैं कि कई लोग आपके प्राकट्य के बारे में भिन्न विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे कई विचार पिछले 3 श्लोकों में कुंती महारानी कह चुकी हैं, अब इस 4th श्लोक में बोल रही हैं कि ऐसे कई लोग कहते हैं कि आप श्रवण कीर्तन आदि अर्थात कृष्ण भक्ति आपके भक्ति मार्ग को स्थापित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि सारे बद्ध जीवों का उद्धार हो, इस हेतु आप यहां पर आते हैं। ये आपके प्राकट्य का कारण है। पहले कुंती महारानी ने कहा था कि वो तो पुण्यवान राजाओं के लिए भगवान उपस्थित प्रकट होते हैं, यदु महाराज के वंश में आते हैं, वो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आते हैं, वसुदेव देवी की जैसे महान भक्तों के प्रार्थना करने पर आते हैं, और अब ऐसा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए, भक्ति मार्ग का भेंट सबको देने के लिए यहां पर आते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न विचार हैं, इनमें से कौन से विचार सही हैं और कौन से विचार गलत हैं? सब सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। भगवान जब प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में तो अनेक कार्यों को, अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। इसलिए इन अलग अलग श्लोकों में जो भगवान के बारे में कुंती महारानी कह रही हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट हो रहे हैं, और अगर भगवान भक्ति को स्थापित करने के लिए यहां पर प्रकट हो रहे हैं, तो इन दोनों चीजों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो देवकी वसुदेव की प्रार्थना अनुसार आएंगे तो भक्ति की स्थापना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो सारे उद्देश्यों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। धर्म की स्थापना करना ये भगवान का स्वयं व्यक्त किया हुआ उद्देश्य है प्रकट होने के लिए। वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो सच्चा धर्म क्या है? भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, कि हे अर्जुन हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो और इस तरह तुम मेरे पास अवश्य आओगे। तो भगवत गीता का हर पन्ना ये घोषणा करता है, गीता का हर पन्ना ये घोषणा करता है कि भगवत गीता का सार है कृष्ण भक्ति। कर्म मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग नहीं, योग मार्ग नहीं, बल्कि केवल भक्ति मार्ग। तो ये धर्म का सार है। वैसे धर्म शब्द को, इसके सच्चे अर्थ को लोग समझते नहीं है। धर्म को एक भौतिक स्वरूप दिया गया है। अगर किसी को पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है, वो कहेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, सिख हूं इत्यादि। लेकिन ये तो शरीर की पहचान है। आपका धर्म क्या है? जब हम पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, तो ये आप कौन हैं? अगर आप अपने आप को शरीर समझते हो, तो आप शरीर के हिसाब से आपके धर्म की व्याख्या करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप आत्मा हैं, तो फिर आपके धर्म की परिभाषा अलग होगी और उस धर्म की परिभाषा को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि वो धर्म सनातन या शाश्वत है। क्यों शाश्वत है? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है वो भी शाश्वत है। हमें हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि हर जन्म में हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। पिछले जन्म में अगर हमें मनुष्य शरीर मिला था, तो कौन से धर्म के हम थे हम नहीं कह सकते। अगले जन्म में हमें क्या मिलेगा हम नहीं कह सकते। तो ये जो भौतिक दृष्टि से धर्म की व्याख्या लोग करते हैं वो सही नहीं है, वो तो बाह्य है। लेकिन मूल बात जो है वो ये है कि आत्मा का भगवान के साथ जो एक प्रेम का, भक्ति का संबंध है नित्य रूप से, जो इस समय जिसको हम भूल चुके हैं, उस संबंध को पुनः स्थापित करना, ये सच्चा धर्म है, सनातन धर्म, भागवत धर्म। तो ऐसे धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान जब कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वो किस प्रकार के धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं? इस प्रकार के धर्म की, भक्ति के धर्म की। चाहे हम किसी भी प्रांत के क्यों न हो, किसी भी देश धर्म के क्यों न हो, अगर हम भगवान के प्रति भक्ति, शुद्ध प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम सही धर्म का पालन कर रहे हैं। अन्य जितने भी कोई धर्म हैं जो हमें भगवत भक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार वो धोखेबाजी के धर्म है, कैटव धर्म। कैटव धर्म को बहिष्कृत किया गया है, उसको बाहर निकाल दिया गया है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे ऊंचा शास्त्र है, इसलिए यहां पे स्पष्ट बताया गया है प्रोज्जित कैटव कि ऐसे धर्मों को जो कि हमें कृष्ण प्रेम तक, कृष्ण भक्ति, झूठे धर्म हैं, इनको हमें त्यागना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सही धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तिमय धर्म की स्थापना करने के लिए इस दुख भरे संसार में आते हैं, जिसको कि भव कहते हैं। इसलिए यहां पर सबसे पहले कुंती महारानी कहते हैं भवे अस्मिन। भव मतलब ये संसार, और अस्मिन मतलब अंदर, तो इस संसार के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये संसार को भव क्यों कहा गया है? भव मतलब बार बार होना। जब किसी चीज को बारंबार परिवर्तित होना पड़ता है तो उसको भव कहते हैं। यहां पर हर एक चीज का परिवर्तन होता है। आपका शरीर देखिए, हर दिन इस शरीर का परिवर्तन हो रहा है। बाहर जगत देखिए, परिवर्तन जो है ये जगत का नियम है। हमारा जन्म होता है, उसके बाद हम बड़े होते हैं, फिर हम परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, फिर हमसे और संतान वगैरह की उत्पत्ति होती है, फिर बुढ़ापा या घटन होता है शरीर का, और अंत में मृत्यु आती है। तो ये छह परिवर्तन के स्तर हैं, और इन छह स्तरों से इस भौतिक जगत में हर चीज को घूमना पड़ता है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, या सारा ब्रह्मांड हो, ये परिवर्तन जो है ये चलते रहते हैं। इसलिए इसको भव कहते हैं। बारंबार होना, इसमें अटक जाना। तो ऐसे भव सागर में, भव सिंधु में रहकर लोग कैसे हैं? सुखी हैं? नहीं। क्लिश्यमानानाम, कुंती महारानी कहती हैं कि जो भी यहां पर हैं इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में, सब दुखी हैं। तो ऐसे दुखी लोगों के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। वैसे दुखी लोगों के लिए आते हैं ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सभी दुखी है। कौन सुखी है? अगर कोई ऐसे 50% जनता सुखी है और 50% दुखी है और केवल दुखियों के लिए आते हैं तो एक बात है, लेकिन यहां सब दुखी है सिवाय शुद्ध कृष्ण भक्त। लेकिन उनको और सुख देने के लिए, उनको और दिव्य आनंद देने के लिए फिर भगवान यहां पर आते हैं। और आकर फिर क्या करते हैं? श्रवण स्मरण और हाणी आदि भक्ति मार्ग में ये अंग हैं। भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में स्मरण करना, भगवान की पूजा अर्चा करना, तो ऐसे सब चीजों को करने के लिए करिष्यन इति केचन, करिष्यन इति केचन मतलब ऐसे और कोई भक्त बोलते, और कोई लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण आदि इन अलग अलग नवधा भक्ति के अंगों की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर प्रकट होते हैं। अविद्या काम कर्म भी, ये जो क्लिश्यमानानाम, जो लोग दुखी हैं, क्लिश्य मतलब दुख कष्ट, तो ये लोग दुखी क्यों हैं? अविद्या में हैं। अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान से दुख आता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अज्ञानी होता है वो पाप करता है, और उसको पाप का फल जब मिलता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। अविद्या ये सर्वव्यापी है, सभी लोग अविद्या में हैं। यहां तक कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का जन्म हुआ वो भी अविद्या में थे। उनको ये नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां बैठा हूं, मेरे आसपास में क्या है, और मुझे सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, उनको भी नहीं मालूम था। अविद्या। ब्रह्मा जी जो हैं वो इस सारे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। भगवान की ओर से वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, साधारण जीव नहीं है। उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्मा जी जब इनका जन्म हुआ वो भी अविद्या में थे, तो फिर हमारी बात क्या है? तो अविद्या में रहते हुए कष्ट ही होगा। जब ज्ञान होता है तो सुख होता है, जब अज्ञान होता है तो दुख होता है। हम सड़क में जा रहे हैं, समझ लीजिए अंधकार है, हमको पता नहीं चल रहा है कि सामने क्या है, और आगे खड्डा आ जाता है, गटर आ जाता है, गिर जाते हैं, कष्ट होता है। लेकिन अगर उस सड़क के ऊपर कोई बिजली है, कोई लाइट है, बल्ब है, दीपक है वहां पर, तो हमें दिखाई पड़ेगा, फिर कोई खतरा नहीं है, फिर हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे जीते समय, विशेष करके मनुष्य जीवन जब हमने प्राप्त किया है, तो हमको ये विद्या प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे कि हम इन भौतिक कष्टों से बच सके। जो व्यक्ति अविद्या में है वो गलत काम करता है, सोचता है कि ऐसे काम करने से मुझे बहुत सुख मिलेगा, परंतु ऐसे काम करने से उसे ज्यादा दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, लेकिन उसको नहीं मालूम। और क्योंकि उसको नहीं मालूम, वो बारंबार उन्हीं चीजों को करता है, और कोई अगर उसको समझाए तो मानता नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभ्युपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभीर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने व्रत लिया हुआ है कि हम अविद्या में ही रहेंगे, हम अज्ञान के अंधकार में रहेंगे, हम गलत काम ही करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसे पाप करने से हमको सुख मिलेगा, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्ति है। इस शरीर के इंद्रियों को इन भोग के वस्तुओं के माध्यम से सुख दिलाना, यह एकमात्र उद्देश्य है। अदांत गोभी विषताम तमिषम, इसलिए नारकीय अवस्था की ओर ये जाते हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, और उन्हीं चीजों को बार बार चबाते रहते हैं जो पहले भी वो कई बार चबा चुके हैं, अर्थात उन्हीं कार्यों में रमण करने का प्रयास करते हैं जो कि हर जीवन में, हर जन्म में वो करते आए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान मेतत पशुभिन नराणाम, ये आहार निद्रा भय और मैथुन का सुख जो है सारे प्राणी लेते हैं, मनुष्य भी लेता है। लेकिन मनुष्य जब सोचता है कि यही चार चीजें हैं जो हमको सुख दे सकती हैं, तो वो क्या करता है, पुनस पुनस चर्वित चर्वणानाम, कि वही चीजों में आनंद लेने का प्रयास कर रहा है जो कि उसने पिछले जन्मों में, कीड़े के जन्म में, पक्षी के जन्म में, पशु के जन्म में वो आनंद लिया है। मनुष्य जीवन इन चीजों के लिए नहीं है, इसलिए उसको पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम कहते हैं प्रहलाद महाराज। और ऐसे व्यक्ति को कोई समझाने जाएगा कि भाई तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लगाओ, मतिर न कृष्णे, लेकिन ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भगवान कृष्ण में नहीं लगती है। परतः स्वतः वा मिथोभिपद्येत, खुद के प्रयास से उसकी बुद्धि नहीं लगेगी, दूसरे लोग उसको प्रयास करेंगे कि इसकी बुद्धि कृष्ण में लगे, नहीं लगता है, और दोनों मिलकर भी करें फिर भी नहीं लगता है, मिथोभिपद्येत। इसलिए अविद्या, अविद्या में रह के हुए दुख ही मिलना है और कुछ संभव नहीं है। तो अविद्या के कारण व्यक्ति के हृदय में गलत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दुराशया ये बहिरर्थमानिनः, दुराशा, बुरी आशाएं मन में रखता है, हमको जाके सिनेमा देखना है, हमको जाके शराब पीना है, हमको जाके टीवी देखना है, हमको जाके गलत तरीके से पैसा कमाना है, तो ऐसे गलत गलत इच्छाएं, दुराशा बहिरर्थ माने ना, इन सब चीजों को मूल्यवान समझकर व्यक्ति ऐसे बुरे आशाओं का शिकार हो जाता है। और जब बुरी आशाएं, इच्छाएं मन में रखता है, तो उनको पूर्ण करने के लिए प्रयास तो करेगा ना, ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठेगा आदमी। जब आदमी के मन में कोई इच्छा होती है तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करता है। तो जब गलत इच्छा होती है तो उस गलत इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी वो काम करेगा, कर्म भी ही। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, अविद्या काम कर्म भी ही, पहले अविद्या, अविद्या की वजह से गलत इच्छाएं या काम, और काम जब इच्छाएं होती हैं उनको तृप्त करना पड़ता है, तो कर्म भी ही। वो कर्म करने पड़ते हैं, और ऐसे कर्म करने से क्या होता है, बहुत दुख मिलता है। क्लिश्यमानानाम, हर एक व्यक्ति ऐसे कामनाओं को लेकर बैठा है, ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से चींटी या चूहे तक। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उनके मन में कामना थी, हालांकि ज्ञान नहीं था लेकिन कामना थी। क्या कामना थी ब्रह्मा जी की? मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। छोटी जो चींटी होती है, चींटी का कामना, उनकी योजना क्या होती है? मुझे ये शक्कर का जो ये कण है वो मुझे लेकर जाना है मेरे समाज में। जो चूहा होता है वो सोचता है कैसे जमीन के अंदर से एक छेद करके अंदर में बाहर अपना घर बनाऊं। मनुष्य सोचता है, उसकी कामना क्या है, बड़े बड़े इमारत कैसे बनाऊं, खूब पैसे कैसे कमाऊं। तो हर एक ब्रह्मा जी से लेकर नीचे चींटी तक सब अपनी योजना में मस्त हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं सब बनाते हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चूहे और चींटी योजना नहीं बनाते हैं, उनके भी बड़े बड़े पंचवर्षीय योजना होते हैं, वो भी बहुत बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे कल वैसा करेंगे। हमें लग सकता है अरे चींटी का क्या योजना है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी हमारे बारे में सोचेंगे अरे इनकी योजना क्या है। ये बोल रहे हैं हम ये करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, 50-60 साल के जीवन में क्या लखपति बनेगा और क्या करेगा, लखपति बना भी तो क्या करेगा उससे, जब तक उसको पैसे मिल जाए बूढ़ा हो जाता है, फिर उसका भोग भी नहीं कर सकता है, फिर मर जाता है और दूसरे लोग उस पैसे का भोग करते हैं, और वो व्यक्ति अपना पैसा नहीं ले जाता, केवल अपना पाप साथ में ले जाता है, और उस पाप के लिए अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति इस चक्कर में पड़ा हुआ है, अविद्या काम कर्म भी क्लिश्यमानानाम, गोल 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 यहां पर इस भौतिक जगत में सभी लोग घूम रहे हैं। सभी दुखी लेकिन सोचते हैं हम सुखी हैं, यही विडंबना है इस भौतिक जगत की। दुख में होते हुए भी अपने आप को सुखी समझना, ये बड़ी विचित्र बात है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, सोचते हैं बेचारे देखो ये मेरे अंश हैं, अगर मेरी सेवा करते, मेरे शरण में रहते तो मेरे धाम में मेरे साथ में होकर दिव्य आनंद का लाभ उठाते, परंतु इनको मेरे सेवा करने की इच्छा नहीं है, स्वतंत्र उनको भोक्ता बनना है, भगवान बनना है, इसलिए मेरी सेवा को छोड़कर, मेरे आश्रय को छोड़कर इस भौतिक दुनिया में माया के जगत में निवास कर रहे हैं, हवा महल में जी रहे हैं, अपने अपने योजनाएं बनाते हुए, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, आज ऐसे है तो कल मेरा वैसे होगा, और ऐसे सपने देखते देखते योजना बनाते बनाते काल तो किसी के लिए रोकता नहीं है। काल सर्प, काल सांप रूपी जो काल रूपी जो सांप है वो आकर निगल लेता है हर एक व्यक्ति को, और ये अपनी योजनाओं की पूर्ति करते करते व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। योजना बनाने में बड़ा आनंद है, हम ऐसा बड़ा एक व्यवसाय करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उनको पूर्ण करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं यहां बद्ध जीवों के ऊपर, और सोचते हैं मुझे यहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये तो हमेशा दुख में ही रहेंगे। इसलिए यहां पर कुंती महारानी कहते हैं श्रवण स्मरण अरहाणि करिष्यन इति। तो इन भक्ति के भिन्न भिन्न अंगों की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने टीका में कि ये श्लोक विशेष करके चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करता है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के वो विशेष रूप हैं, वो विशेष अवतार हैं, जो खास करके भक्ति के आंदोलन को स्थापित करने के लिए और फैलाने के लिए आए हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण अनेक अवतारों में आते हैं, और हर एक अवतार में उनके कोई विशेष कार्य रहते हैं संपन्न करने के लिए, विशेष उद्देश्य रहते हैं। जैसे कि जब वो मत्स्य अवतार के रूप में आए तो अपने भक्त राजा सत्यव्रत को बचाने के लिए आए, नरसिंह देव के रूप में आए तो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आए। स्वयं भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें की, वृंदावन के निवासियों के साथ बहुत सुंदर लीलाएं किए, लीलाओं का आनंद उन्होंने लिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये एक ऐसे अवतार हैं जो खुद भक्ति करके हम सबको भक्ति सिखलाने के लिए आए हैं। अपने उदाहरण से भगवान का नाम लेते, अपना ही नाम लेते आए हैं। एक भजन है बंगाली में, अपनी नाम अपने लोए, कि अपना ही नाम खुद लेकर वो आए हैं यहां पर हमको सिखाने के लिए कि भगवान का नाम कैसे लिया जा सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के उनके एक पार्षद थे भक्त चैतन्य महाप्रभु के, तो उन्होंने एक श्लोक कहा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। वो कहते हैं कि वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग, निज मतलब स्वयं की ओर भक्ति फैलाने के लिए, शिक्षा अर्थ ये शिक्षा देने के लिए परम पुरुष यहां पर आए हैं। उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम् प्रपद्ये। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और वो कृपा के अम्बुधि हैं, कृपा के सागर हैं, सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए वो आए हैं। आसानी से सबको भक्ति दे रहे हैं, इसमें कोई शर्त नहीं रख रहे हैं कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप कर सकते हैं, आप अगर हिंदू हैं तो कर सकते हैं, आप भारतीय हैं तो कर सकते हैं, आप धनवान हैं तो कर सकते हैं, आप सन्यासी बनेंगे तो ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। ऐसे सभी के लिए ये खुला है मार्ग, सारे बद्ध जीवों को उन्होंने मार्ग खोल के रखा है, बल्कि पशुओं को भी उन्होंने ये मार्ग खोल के दिया। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो उस समय उन्होंने झारखंड के जंगलों में से पशुओं को भी नचाया, कीर्तन करवाया उनके माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु का यह आंदोलन है उन पशुतुल्य मनुष्यों के लिए जो केवल अविद्या काम कर्म भी ही क्लिश्यमाना नाम इसमें लगे हुए हैं। और वास्तव में आजकल मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पशुतुल्य होते जा रहा है। वृंदावन में हम देखते हैं बहुत सारे बंदर होते, इतने आजकल बढ़ गए हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या सारे वृंदावन में बन गई है। और क्योंकि बंदरों की संख्या बढ़ गई है और इनके लिए भोजन कम हो रहा है तो आजकल मनुष्यों के ऊपर वो आक्रमण करते हैं, काट डालते हैं। कोई कुछ कर भी नहीं रहा हो तो उसके ऊपर छलांग मार के कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी हमने मंदिर में ऐसे किया, एक बड़ा लंगूर लाया है जो मनुष्य के साथ अच्छा अच्छी तरीके से रहता है, और उसका मुंह काला होता है और थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। उसको देखकर दूसरे बंदर भाग जाते हैं। वो बंदर इतना बड़ा होता है कि वो काटता नहीं है, केवल थप्पड़ मारता है। जब वो बंदर दूसरे वालों को थप्पड़ मारता है वो 10 दिन उसको बुखार आता है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो खैर, वहां बंदरों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बहुत लोग वृंदावन में रह के पाप करते हैं, इसलिए उनको वृंदावन में ही बंदर, सुअर या कुत्ते का शरीर मिलता है। ऐसे देह जो है उनको वहां पर मिलते हैं वृंदावन में, और बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये जो बंदर हैं, अगर आप उनको देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं, आप देखेंगे कि व्यर्थ का कार्य दिन भर करते रहते हैं, बिना कोई फायदे के ऊपर नीचे जाते रहते हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर भी जाएंगे, नीचे आएंगे, कुछ करेंगे नहीं वहां जाकर, जाएंगे ऊपर ऐसे वैसे किया फिर से नीचे आएंगे, पेड़ में चढ़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे इधर जाएंगे। इतने चंचल है कि जो भी कार्य करते हैं कुछ उद्देश्य नहीं नजर आता उनके पीछे, केवल अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं, शक्ति क्षीण करा रहे हैं अपनी बस। ऐसा भी नहीं है कि यह वह इतना परिश्रम करने से, इतना ऊंचा चढ़ने से कुछ लाभ मिल रहा है उनको, लाभ नहीं मिल रहा, केवल इधर उधर चढ़ना कूदो, ये करो वो करो। और हमने देखा है कि बार बार जब वो आक्रमण करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य नहीं, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे वो कपड़े देखते हैं, मैं ब्रह्मचारी जो कपड़े टंगाते हैं बाहर, धोती लगे फाड़ देते हैं, कोई फायदा उनको नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि उसको धोती चाहिए, कुछ देखा उसने, उसको कुछ गड़बड़ करना है, नुकसान करना है वो दूसरे का, तो जाके फाड़ देगा उसको, चले आएगा। और ऐसे ही कुछ भी देखा उसने, उसको जाके उसके ऊपर कूदेगा, उसको तोड़ के उसको छोड़ देगा। हमारी चप्पल कितनी बार चोरी हो गए, वो चप्पल चोरी करते हैं फिर मुंह में डाल के उसको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जिसको आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि आपका चप्पल है कि क्या है, और फिर आपको लौटा के चले जाएंगे। वो चप्पल चबा चबा के उसको कुछ फायदा हुआ नहीं, उसको भी मालूम है कि ये उसका भोजन नहीं है, फिर भी करेगा। एक बार हम एकादशी के दिन जप करने गए थे, वहां गौशाला के पास एक थोड़ा बगीचा है हमारे मंदिर के अंदर, अकेले में बैठ के जप कर रहे थे, अचानक पीछे से आके हमारे सिर पे बैठ गया। पीछे से हमने देखा कौन है, बंदर आके बैठा है, और फिर भाग गया। कुछ फायदा नहीं हुआ उसको, है ना, हमारे कंधे पे चढ़ के क्या लाभ मिला उसको, और उधर जाके चुपचाप बैठ गया और दूसरी ओर देख रहा था, मानो कि उसको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उसने। तो इस प्रकार के भाव हम सोच रहे थे मंदिरों के बारे में कि अरे हमारा मनुष्य समाज भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे का नुकसान करना बिना कोई वजह से, केवल इधर उधर शक्ति को गंवाना। प्रभुपाद कहते थे ये पशु लोग जो है चार पैरों पे इधर उधर जाते हैं और मनुष्य चार चक्कों पे जा रहा है, सोच रहा है कि मैं कितना प्रगति कर चुका हूं, बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन क्यों जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो, क्या फायदा मिलेगा तुमको जाकर, किसी को नहीं मालूम, बस जा रहे हैं वो बंदर की तरह, ऊपर जा रहे हैं कोई काम नहीं, फिर से नीचे, इधर से उधर से इधर, बस घूमते 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 भर रहे। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यथः। नारद मुनि ब्रह्मा जी से नारद मुनि व्यास देव जी से कहते हैं कि ऐसे चीज के लिए प्रयास करो हे व्यास देव, जो कि सारे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो क्या है, कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण भक्ति चाहिए तो यहां बैठकर भी मिल सकता है, बेलगाम में केवल भक्तों के संग में आना है। ऐसा नहीं है कि हमको बेलगाम छोड़कर हमें और बहुत जगह घूमना फिरना पड़ेगा, इधर जाना उधर जाना, जरूरी नहीं है। भगवान हम सबके पालन पोषण के लिए व्यवस्था करते हैं, जब पक्षी पशुओं की व्यवस्था करते हैं तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे। तो हमें भी मनुष्य समाज को भी वानर समाज की तरह इधर उधर केवल एक दूसरे का नुकसान करना, इसमें कोई फायदा नहीं है। अविद्या काम कर्म भी, इसलिए फिर क्लिश्यमानानाम, सभी दुखी होते हैं। तो इस दुखद अवस्था से निकलने के लिए ये मार्ग है, श्रवण स्मरण अरहाणी। तो श्रवण मार्ग कितना अच्छा है, हम आकर भगवान की कथा सुन सकते हैं, उनका संदेश सुन सकते हैं, उनके पवित्र नामों को सुन सकते हैं, और फिर स्मरण करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, किसी उसके दोस्त ने बुलाया, चलो चलो आज प्रवचन है, आज कीर्तन है, चलो, उसकी ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन दोस्त ने बुलाया इसलिए चलो जबरदस्ती करके वो आ गया। और वो 2-3 घंटे यहां बैठता है और कीर्तन में भाग लेता है, क्योंकि अंदर है तो भाग लेगा, उसको सुने ही देगा। प्रवचन में बैठता है भले अच्छा लगे या ना लगे, और फिर बाद में जाएगा सोचेगा अरे रे रे मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए, कृष्ण 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 मैंने किया, क्या लाभ हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये स्मरण है, उसको लाभ होगा। उसने किया ना 2-3 घंटा कृष्ण का श्रवण और कीर्तन किया, तो बाद में जाके स्मरण कर रहा है। क्या स्मरण कर रहा है? अरे रे वो बेकार था, फिर भी स्मरण कर रहा है प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि वो सोच रहा है मैंने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण का नाम सुना मैंने। तो इस प्रकार से ये कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना अच्छा है कि थोड़ा भी कुछ हम भक्ति करते हैं तो बहुत लाभ हो सकता है। धीरे 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 से बढ़ के वो सुकृति हमारी बढ़ती जाती है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को किताब देते हैं, ये भगवद गीता पढ़िए, श्रीमद भागवत पढ़िए, देखो कितना अच्छा ग्रंथ है। तो वह राधा कृष्ण की तस्वीर देखता है कवर के ऊपर, उसको अच्छा लगता है, वो अंदर देखता है और शायद ले भी लेता है पुस्तक या नहीं भी ले, लेकिन उसकी भक्ति शुरू हो गई। फिर और धीरे धीरे से उसको भक्तों की मुलाकात होगी, भक्तों का संग होगा, और ऐसे करके वो इस जन्म में और आने वाले जन्मों में भक्ति में प्रगति करेगा। तो ये श्रवण कीर्तन का मार्ग इतना अच्छा है कि बहुत सुलभ होते हुए भी सबसे ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति हमको करा सकता है। अरहाणी, भगवान की पूजा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 2400 घंटे हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति सिंहासन पर जाकर भगवान का श्रृंगार कर सकता है, आरती उतार सकता है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अर्चना पद्धति केवल उस व्यक्ति तक सीमित है। जो भगवान के श्री विग्रह के सामने आते हैं और भगवान के सामने बैठकर उनका सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, बस उनको फायदा होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, अगर आपको श्रवण करने में रुचि नहीं है, जब कीर्तन करने में रुचि नहीं है, आप पूजा नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम के सामने बैठिए, बस दर्शन करते रहिए भगवान को। सोचिए हाँ कितना सुंदर श्रृंगार है, भगवान का रूप कितना सुंदर है, बस इतना देखते रहिए। ऐसे देखते रहने से बेड़ा पार हो जाएगा, हम परिपूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये सब करने का मौका इस समय मिला है। कोई कीमत नहीं है। देखिए यहां बैठकर केवल भगवान को देखना है और इससे कितना लाभ होगा। लेकिन लोग 20-25-50 न जाने कितने रुपए देकर सिनेमा के टिकट खरीद के अंदर जाते हैं 3 घंटे के लिए, और उसको क्या चीज देखते हैं? ऐसी कोई चीज जिससे कोई लाभ नहीं है, जो केवल नुकसान करता है। यहां तो कोई शुल्क नहीं लगता आने के लिए, कोई कर टैक्स नहीं देना पड़ता यह मंदिर में आने के लिए। तो यहां आकर कोई भगवान के सामने बैठे, भले उसको जब भी नहीं करना है लेकिन केवल दर्शन करे, ऐसे दर्शन करके वो भगवान के धाम में जा सकता। क्यों? क्योंकि दर्शन करते 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 उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा फिर धीरे धीरे उसको श्रवण कीर्तन आदि में रुचि जागृत हो जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इस पद्धति को इतनी सुंदर तरीके से स्थापित किया है यहां पर कि कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें संस्कृत पंडित होना है, ये बहुत तपस्वी होना है, योगी होना है, ऊंचे कुल में जन्म लेना है, नहीं, कोई भी कर सकता है। इसलिए कुंती महारानी यहां पर कह रही हैं कि भवे अस्मिन, कि आप इस भव सागर में ऐसे कृष्यमाणा नाम, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए आए हैं और आप भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए हम सबको इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अविद्या से मुक्त होना चाहिए सत्संग में आके सही ज्ञान प्राप्त करके। काम, कौन से इच्छाओं का अनुशीलन करना चाहिए वो हमें जानना चाहिए। गलत इच्छाओं को त्याग कर सही इच्छा को प्राप्त करना चाहिए। कर्म भी ही फिर उन सही इच्छाओं के अनुसार हमें कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त लोग काम नहीं करते हैं, भक्त लोग भी हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए व्यस्त रहते हैं। बल्कि जो बाहर के दुनिया के लोग हैं उनसे ज्यादा व्यस्त भक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा 24 घंटे हो सकती है। तो इस प्रकार से हम पूरा पूरा फायदा इस भक्ति मार्ग का उठा सकते हैं। तो अविद्या काम कर्म भी, इसको हमने अगर सुधार लिया, अविद्या को विद्या में परिवर्तित कर दिया, दुराशा को अच्छी आशाओं में परिवर्तित किया, हमारे सारे कर्म कृष्ण के लिए हमने करना शुरू किया, हमारे लिए नहीं, तो फिर क्लिश्यमाना नाम नहीं होगा, फिर हम सुखी होंगे। और फिर अंततः कृष्ण भक्ति की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके हम भगवान श्री कृष्ण के निजीय सानिध्य को उनके धाम में प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि ये हमारा आखिरी जीवन होगा और जीवन के अंत में हम सीधे भगवान के धाम वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में चले जाएं और वापस यहां इस भौतिक जगत में नहीं आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बारे में कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी किसी के हो तो आप पूछ सकते हैं। भक्तों से सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे हृदय जो है वो बहुत मलिन है, बहुत गंदे हैं। जहां कि हम भगवान का स्वागत नहीं कर सकते, तो क्या हम भगवान को ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो खुद ही हमारा हृदय शुद्ध करें? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम अपने हृदय को स्वच्छ करें, हालांकि हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अवश्य ये सही है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। हम तो पूरी तरह से गुरु, वैष्णव और भगवान के ऊपर हम निर्भर हैं। अगर हम गुरु, वैष्णव और भगवान के प्रति आश्रित रहे, निर्भर रहे, तो ये सब बड़े आसानी से हो सकता है। केवल ये श्रवण कीर्तन के मार्ग से सब हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यत ईक्षणम यत वंदनम यत स्मरणम यत अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुभद्र श्रवसे है, जिनके बारे में सुनने से ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। पुण्य श्रवण कीर्तन सुभद्र, तो ऐसे सुभद्र भगवान श्रवसे, ऐसे भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूं कि जिनके बारे में यद श्रवणम यद स्मरणम, जिनका श्रवण करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनके अर्च विग्रह की सेवा करने से, जिनके बारे में कीर्तन करने से बहुत ही जल्दी लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, सद्य मतलब तुरंत, तुरंत हमारा हृदय साफ हो जाता है। विधुनोति कल्मषम, कल्मष मतलब जो गंदगी हमारे हृदय में है, विधुनोति मतलब नष्ट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो भगवान ने हमें एक तरीका दिया है हमारा हृदय स्वच्छ करने के लिए, और वो क्या है? यही भक्ति का मार्ग, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन आदि। केवल इसको हम स्वीकार करेंगे तो सद्य बहुत ही शीघ्र विधुनोति कल्मषम, हमारे हृदय के कल्मश चले जाएंगे, हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और कोई प्रश्न किसी के?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
आपने अभी बोला कि जो लोग वृंदावन में जाके पाप करते हैं तो उसको बंदर का जन्म मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में भी जन्म पाना बहुत अच्छा है, तो एक प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि वो बंदर ने चप्पल ली और आपके कंधे पे बैठा, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों के चरणों की धूली लेना चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बंदर का फायदा तो हुआ ना।
वो तो भक्तों की चरण धूली करने से, हमारे थोड़े करने से होगा फायदा। तो पहली बात है कि हाँ, वृंदावन में जन्म लेना ये कभी निष्फल नहीं होता, ये भी सही है। कि भले प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन के रज में जिसने लौटा है उसका ब्रजवास कभी निष्फल नहीं होगा, फायदा तो होगा। परंतु जो व्यक्ति वृंदावन में रह के ऐसे पाप करता है, उसको ऐसे पशु शरीर मिलता है, उस एक शरीर में उसको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। अब हम बंदरों की अवस्था देखिए, आप तो जानते हैं कि ठंडी में और गर्मी में बहुत परेशानी होती है वृंदावन में। इतनी ठंडी होती है वहां पर, कमरे के अंदर भी लोगों को परेशानी हो जाती है। बंदरों को कोई घर मकान नहीं होता और रात भर उनको बाहर रहना पड़ता है पेड़ के ऊपर, कितना कष्ट होता है उनको। और गर्मी के समय हमने देखा, इस समय वो तो पागल ही हो जाते हैं। वो गर्मी की वजह से उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, वो एक दूसरे के झगड़ा करते हैं, किसी किसी को काट देते हैं, बहुत परेशानी है, बहुत दुख है जीवन में। लेकिन ऐसा दुख अनुभव करने से उन्होंने किए हुए अपराध वगैरह से मुक्त हो जाते हैं, फिर गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है गोलोक वृंदावन जाने का, ये भाव सही नहीं है। हम वृंदावन में रहेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर एक जन्म हम बहुत कष्ट पाएंगे और फिर गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। नहीं, प्रेम से बेलगाम में रह के भी हम गोलोक वृंदावन जा सकते। ठीक है। और अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे है। विद्या निज भक्ति योगार, ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने इसकी रचना की थी, और इसकी रचना करके उन्होंने ऐसे कई श्लोक लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उसको सुना तो तुरंत उन्होंने फाड़ दिया उस श्लोक को जिस पन्ने पे लिखा था। लेकिन उसके पहले जो उनके भक्त थे उन्होंने इस श्लोक को कंठस्थ कर दिया था, फिर कंठस्थ करके उन्होंने लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु हालांकि श्री कृष्ण हैं, परंतु भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जब भी कोई उनको भगवान कह के संबोधित करता तो वो आंख बंद करते, विष्णु विष्णु विष्णु, एक जीव को कृष्ण नहीं कहो, विष्णु नहीं कहो। वो हम सबको सिखाना चाहते थे कि किसी भी साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं कहना चाहिए, अवतार नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने जब ये देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने ऐसे उनका गुणगान किया है, तो नम्रता की वजह से उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। लेकिन क्योंकि अन्य भक्तों ने उसको कंठस्थ कर दिया था, तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको अन्य भक्तों में फैला दिया बात को। इसलिए फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत में लिखा है। वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य ने शतक लिखा, 100 श्लोक लिखे ऐसे एक के बाद एक। माइक कहाँ है?
अरे आपने बताया कि एक जीव को कृष्ण नहीं कहना चाहिए, तो वो हमको बताना चाहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो हम कभी कभी किसी के घर जाते हैं, तो हमको भक्तों को पता है कि एक जीव को कृष्ण कहना ठीक नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं हमें कि आप भगवान कृष्ण के जैसे हमारे घर आ गए हैं। तो हम कुछ बताने जाते हैं तो हमको उल्टा बोल देते हैं कि फिर से भी ये नहीं, आप भगवान के जैसे हमारे घर आ गए हैं।
आपने अगर विरोध नहीं किया तो इसका मतलब है आप इस बात को विश्वास करते हैं, है ना। तो जब कोई बोलते हैं कि आप ही भगवान हैं, हमारे घर में आए हैं, तो उनको बताना चाहिए सत्य क्या है। ऐसे कितने तथा कथित अवतार हैं जो अपने आप को भगवान कह के समाज के सामने पेश आते हैं, और जब इस्कॉन के भक्त उनके पास गए थे उनको पूछने के लिए कि आप क्या भगवान हैं, तो बोला नहीं, उनको मानना पड़ा मैं भगवान नहीं हूँ। तो फिर जब आपके नाम के सामने भगवान क्यों आप कहते लिखते हैं, उनका हम नहीं करते, हमारे जो शिष्य हैं वो ऐसा करते हैं। तो फिर अगर शिष्य कर रहे हैं ऐसे, तो शिष्यों को मना करना चाहिए कि ऐसे मुझे भगवान नहीं कहना, जैसे प्रभुपाद ने किया था। प्रभुपाद ने एक बार कई सन्यासी, दो सन्यासी थे, उनको थोड़े समय के लिए संस्था से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन चालू कर दिया कि प्रभुपाद भी भगवान के अवतार हैं। एक दृष्टि से देखा जाए ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत खुशी हो गया, अरे ये लोग मुझे भगवान बोल रहे हैं, चलो इसमें विरोध क्यों करना है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सख्त थे, मुझे ऐसी गलती कभी नहीं करना, यही बीमारी सारे विश्व में है इसलिए इतना उत्पात हो रहा है, मैं भगवान का दास हूं इसलिए मैंने ये संस्था का नाम मेरे पीछे नहीं रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभुपाद भावनामृत संघ नहीं रखा है मैंने, मेरे मिशन का नाम मेरे पीछे नहीं रखा है, भगवान के पीछे रखा है। तो बहुत कड़क उन्होंने कदम उठाया और उसके बाद किसी भी भक्त ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद बार बार ऐसे बताते थे अपने उपदेशों में। तो अगर वो व्यक्ति भी वास्तव में ऐसा स्वीकार करना चाहते हैं कि वो भगवान नहीं है, तो अपने शिष्यों को उनको सख्ती से बोलना चाहिए कि मुझे कभी भी भगवान नहीं बुलाना, तो हमें भी ऐसे कोई भगवान बुलाएं, वो अपनी भावना से बुला रहे हैं, लेकिन हमें उनको सही ज्ञान देना चाहिए कि हम तो केवल भगवान के दास हैं, भगवान हम कभी नहीं है, ऐसा मत बोलिए, उनको समझाना चाहिए।
फिर भी मानते तो
नहीं मानते हैं तो उनको बताना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। हमको ये ज्ञान सबको देना है, हम चुप थोड़ी बैठ सकते, कोई हमको भगवान बुलाएगा तो हमें बताना हमारा काम है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए ऐसी अवस्था में। जब हम ऐसे गलत बात में चुप बैठेंगे तो इसका मतलब है कि हम भी उस गलती के भागीदार हो गए। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, अगर उनकी इतनी श्रद्धा है, इतने श्रद्धावान है वो, उनका अच्छा भाव है, तो जब अच्छी तरह से समझाया जाएगा तो अवश्य मानेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी
गुरु जी, भक्त सभी बनते हैं लेकिन निदृष्ट को बहुत ही होते हैं, भक्त निदृष्ट क्यों होते हैं,
क्या होते हैं,
निद्रा क्यों होते हैं,
निद्रा क्यों आती है भक्त बनने के बाद, निद्रा क्यों आती है, तो पहले निद्रा नहीं आती थी। लेकिन हाँ एक बात है कि जब क्लास में बैठते हैं तो नींद आती है, जब में बैठते हैं तो नींद आती है,
हरे कृष्ण प्रभु,
ऐसे कोई बात नहीं है, निद्रा क्यों जाती नहीं है, जाएगी धीरे धीरे से, जितना हम परिश्रम करेंगे, हम सेवा करेंगे उतना जाएगी, लेकिन शरीर को जितना आराम की आवश्यकता है उतना तो देना चाहिए, कृत्रिम रूप से हमारी नींद को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए और बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो दुख से मुक्त होना चाहता है वो सब चीज संतुलित अवस्था में करता है, उसका आहार, उसका विहार, उसका कर्म, उसकी निद्रा भी। ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कल बताया था कि अगर कोई गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसका आध्यात्मिक स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है, तो अगर कोई भक्त जबरदस्ती जिसका उसको अपना स्वरूप मालूम नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती माधुर्य भाव में भक्ति कर रहा है तो उसकी गति क्या होगी,
ऐसे करने की ही जरूरत क्या है, मैं केवल गुरुदास रहना है, उसकी गति क्या होगी वो इसके बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे ये भक्ति मार्ग की विधियां हैं, जैसे हमें बताया गया है, हमें तो केवल क्रमशः ऐसे करते रहना चाहिए और प्रगति फिर शनै शनै होती रहेगी, क्रम से होती रहेगी हमारी प्रगति। जैसे कोई दूसरे कक्षा का बच्चा है, अगर वो दसवीं कक्षा की किताब लेके बैठेगा क्या होगा, कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा ना उसको। उसी प्रकार से हम जिस कक्षा में हैं उसी स्तर से हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी प्रकार से कृपया आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ मंदिर में आइएगा, सत्संग में भाग लीजिए और भगवान के धाम में जाने के लिए तैयारी कीजिए। तो अब कीर्तन होंगे, कीर्तन के बाद प्रसाद, लेकिन आज इष्ट गोष्ठी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कल यात्रा जा रही है, यात्रा में होगा, कल नहीं परसों, बुधवार को, ठीक है। हरे कृष्णा।